बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तहज़न, दर्स नंबर 12। कल मैंने आप लोगों के लिए एक प्योरिफिकेशन ऑफ द हार्ट का एक सेक्शन मैंने भेजा था, क्योंकि उसका रिव्यू ज़रूरी था इससे पहले कि हम लोग अपने ला तहज़न के सेशंस में आगे बढ़ें। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कल से हम लोग इंशाल्लाह एक डेफिनेट कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि सेल्फ़ डिसिप्लिन के बारे में है, क्योंकि हम लोग ला तहज़न के शुरू में पढ़ चुके हैं कि जब तक इंसान की ज़िंदगी में एक ऑर्डर नहीं आता और नज़्म व ज़ब्त का वो मुजाहिरा नहीं करता और वो अपना टाइम टेबल ठीक नहीं करता और अपने मामूलात ठीक नहीं करता, तब तक उसके लिए एक खुश और हशाश बशाश ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। और इस चीज़ का नाम इन अदर वर्ड्स जो है सेल्फ़ डिसिप्लिन है, जिसको हम लोग अपने आदात और अपने मामूलात को ऐसे रेगुलेट करना कहते हैं कि हम उससे थोड़े वक्त में अच्छे नतायज हासिल कर सकें और हमारा वक्त ज़ाया ना हो। क्योंकि जो एक मशहूर कौल है कि वक्त को ज़ाया ना करें वरना वक्त आपको ज़ाया कर देगा, तो ये बहुत ही एक पते की बात है। और हम लोग सारा वक्त फजूलियात में मसरूफ़ रहकर और खेल कूद में और रिलैक्सेशन की तलाश में और अपने आप को आराम देने के ख़्याल से हम लोग काम करने से और एक्टिव रहने से परहेज़ करते हैं, जबकि ये हमारी खुशी की और हमारी ज़िंदगी की जो एनर्जी है ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है कि हम वक्त ज़ाया करें ऐसे कामों में जो काम बाद में हमें ज़ाया कर दें। तो आज का सबक मैंने आपको यही सिखाना है कि जिस चीज़ को हम लोग सेल्फ़ डिसिप्लिन कहते हैं दरअसल वो सिर्फ़ सेल्फ़ कंट्रोल है। हम लोग अक्सर आपने नोट किया होगा कि हम कहते हैं कि फ़लाँ ने मुझे इतनी बातें सुनाई लेकिन मैंने तो बस बिल्कुल खामोशी से चुप करके सुन ली और मैंने बड़ा ही अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। या हम ये कहते हैं कि सुबह उठना तो मेरे लिए इतना मुश्किल है, उफ़ मुझे तो लगता है कि बस मेरी कमर ही टूट जाएगी जब मैं बिस्तर छोड़ रही होती हूँ, लेकिन मैं बस अपने दिल पे पत्थर रख के और बस सब्र करके बिस्तर से उठ जाती हूँ और बड़ी मुश्किल से उस वक्त मैं अपनी नींद को कंट्रोल करती हूँ। या हम ये कहते हैं कि यार आजकल मैं एक बहुत ही मुश्किल डाइट पर हूँ और उसमें मैंने मसलन जैसी बेवकूफ़ डाइट्स होती हैं, मसलन मैंने सारा दिन शायद सिर्फ घास खानी है और मैं बड़ी मुश्किल से बाकी चीज़ों से सब्र करती हूँ और मैं सारा दिन घास खाती रहती हूँ, तो ये चीज़ें और मैं बड़ा मुश्किल से अपनी भूख को मैंने कंट्रोल किया हुआ है। तो ये अल्फाज जो हैं ये इस तरह के जुमले हम दिन में कितनी दफ़ा बोलते हैं। हर एक चीज़ का जो हमारा रिस्पांस होता है, जब हम किसी को कुछ रिस्पांस देना चाहते हैं लेकिन हमें ये एहसास होता है कि शायद ये अगले बंदे को बुरा लगेगा या इससे सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, तो हम वहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने अपनी ज़बान को या मैंने अपनी भूख को या मैंने अपनी नींद को या मैंने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लिया। ये कंट्रोल का लफ्ज़ जो है इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं और हम ये कहते हैं कि सेल्फ़ कंट्रोल तो जो है वो असल में बहुत ही एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, इसको हम एक मेडल की तरह पहनते हैं। और हम कहते हैं, हम उन लोगों की तारीफ़ें करते हैं जो हमारे ख़्याल में बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल के मालिक होते हैं और जो अपने आप को मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में कंट्रोल करना जानते हैं। दरअसल सेल्फ़ कंट्रोल जो है, जिस चीज़ को हम सेल्फ़ कंट्रोल कहते हैं, वो एक बहुत ही मनफी ट्रेट है और एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेट है। क्योंकि आप ये देखें, सिर्फ ये जो तीन जुमले मैंने आपके सामने बोले कि मैं उनकी बातें तो मुझे बहुत बुरी लगी और वो बड़ी ही नाज़ेबा बातें कर रही थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ख़ुद को कंट्रोल किया। यानी कि एक नाजायज़ बात आपके सामने हुई, एक गलत बात हुई, एक बेइंसाफी हुई, लेकिन आपने वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं दिया और आपने अपने आप को कंट्रोल किया और आपने ये समझा कि अज़मत इसी में है। दूसरी बात, जैसे कि मैं तो नींद मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका अलार्म उस वक्त ना बजे या अगर आपकी छुट्टी हो, जैसे वीकेंड है, तो आप अपनी नींद को हरगिज़ नहीं कंट्रोल करेंगी और आप इसी तरह सोती रहेंगी यहाँ तक कि दिन चढ़ जाए और 2 बज जाएँ और 12 बज जाएँ। ना आप नाश्ता करेंगी, ना आप घर की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेंगी, बल्कि आप अपनी नींद को चूंकि कंट्रोल कर करके थक गई हैं, तो जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप वो कंट्रोल लूज़ कर देंगी और आप वो कंट्रोल ख़त्म कर देंगी। और जब आप उठेंगी तो यकीनन आपकी तबीयत बहुत ख़राब होगी और आपके बहुत से काम नहीं हुए हुए होंगे और आपको दोबारा से बहुत सी फ्रस्ट्रेशन होगी। इसी तरह जो डाइटिंग का मैंने आपको डाइटिंग का मसला बताया कि मैं तो सारा दिन घास खाती हूँ और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी भूख को कंट्रोल किया हुआ है, तो भूख एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत अरसा नहीं कंट्रोल कर सकते। ये इंसानी जिस्म जो अल्लाह ने डिज़ाइन किया है मेडिकली, वो एक ख़ास हद से ज़्यादा भूख को नहीं कंट्रोल कर सकता। तो जब वो कंट्रोल आप लूज़ करेंगी और वो आपके जहन मतलब आपका ब्रेन और आपका जो मैदा है वो उस कंट्रोल से एस्केप कर जाएगा, तो फिर क्या करते हैं ऐसे लोग जो घास वाली डाइटिंग कर रहे होते हैं? फिर वो बिंजिंग करते हैं, फिर वो एक वक्त में हज़ार हज़ार और 2000 कैलोरीज़ खा जाते हैं और उनको कोई एहसास नहीं होता, यहाँ तक कि उनका दिल ख़राब हो जाता है या वो वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं और वो बिंजिंग के मरीज़ बन जाते हैं। तो यानी अपनी भूख को कंट्रोल करना जो है एक ख़ास लम्हे में और एक ख़ास वक्त में और चंद महीनों के लिए ये आंसर नहीं है। इन सब सवालों का जवाब ये है कि आपने सेल्फ़ कंट्रोल नहीं प्रैक्टिस करना, आपने सेल्फ़ रेगुलेशन और सेल्फ़ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे आप नोट करें कि एक किसान है या एक माली है, आजकल जैसा मौसम है आप देखें, इस मौसम में हम लोग लॉन में जाते हुए खासे घबराते हैं और हम लोगों को या तो शाम ढले जाते हैं या सुबह सवेरे अगर हम उठ जाएं, किसी तरह हमें ये एजाज़ नसीब हो जाए कि हम सुबह नमाज के साथ ही उठ के बाहर लॉन में निकल जाएं, तो शायद हम कुछ काम कर सकें। लेकिन अगर आपके पास कोई माली है या कोई किसान है आपके घर के करीब या आपके घर में कोई गार्डनिंग के शौकीन हैं, तो आप उन्हें नोट करें कि वो पसीने में शराबूर, यानी उनका सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ होता है। बाद में घर में आके वो कहते हैं प्लीज़ हमें लीमू दे दें, लीमू पानी दे दें, या वो पानी पीते रहते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती उन्हें उस पसीने की और उस गर्मी की, और वो मुसलसल अपने खेत में या लॉन में काम करते रहते हैं और फिर बाद में आके अंदर शावर लेते हैं या कपड़े बदलते हैं और फिर खाते पीते हैं, घर वालों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? आखिर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी मोटिवेशन है जो उनमें है और आप में या मुझ में नहीं है कि हम जैसी धूप को देखते हैं या हम जैसी कमरे से बाहर निकलते हैं तो हम वापस एयर कंडीशन कमरे के अंदर भागने की हमें जल्दी होती है और हम दौड़ के एक ठंडे कमरे में चुप करके कोने में बैठ जाते हैं कि हमें पसीना भी ना आए और हमारा चेहरा भी ना सुर्ख हो और हमें गर्मी भी ना लगे और हम वहाँ पे बस बैठे रहते हैं यहाँ तक के शाम हो जाती है या हम सो जाते हैं उसी हालत में या हम खाना भी वहीं लाकर खाते हैं। तो आखिर उन लोगों में जो मुसलसल अपने लॉन में या खेतों में आजकल काम कर रहे हैं और हम में क्या फ़र्क है? हम में और उन में मेन फ़र्क जो है वो सेल्फ़ डिसिप्लिन का है। हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर बाथरूम जाएं या किचन में जाएं तो हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हैं और पसीना बहता रहता है और हम गर्मी को बुरा भला कहते रहते हैं, अपना काम हम करते रहते हैं और हम कहते हैं यार बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ है, बस जैसे ही ये काम होगा तो मैं भाग के जाके एयर कंडीशन कमरे में बैठ जाऊँगी। ये सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ़ डिसिप्लिन वाले लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आजकल ही तो मौसम है, आजकल ही तो हम अच्छी तरह से पौधों को उनकी नशोनुमा कर सकते हैं, ज़मीन पूरी नरम हुई हुई है बारिशों के बाद और इसके जो कीमती सोते हैं इसके अंदर जो मादनियात हैं वो फूट पड़े हैं और हम आज ही हमने अपने सारे पौधों को सही तरह अरेंज करना है और अच्छी तरह लगाना है और अच्छी तरह ज़मीन को खोद के उसके अंदर हमने ट्रांसप्लांटेशन करनी है, क्योंकि ये मौसम फिर नहीं आएगा। और हमारा लॉन, अगर हम अभी मेहनत करेंगे तो ये हमारा लॉन जो है या हमारा खेत जो है ये फिर सारा साल हमें फ़ायदा देगा। ये ऐसा ही खूबसूरत लगेगा, ये लहलहाता रहेगा और ग्रीन रहेगा और फ्रेश रहेगा। और जब बहार आएगी तो इसमें प्यारे प्यारे फूल उगेंगे और हम इसमें बैठेंगे। तो जो हमारा एटीट्यूड है, जो सेल्फ कंट्रोल वालों का एटीट्यूड है, वो मुस्तकिल यानी एक शिकायत करने वाले का और मुस्तकिल लोगों को और चीज़ों को ब्लेम देने वालों का एटीट्यूड है, और वो मुस्तकिल एक फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस करने वाला एटीट्यूड है जिसमें हमारी काम की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। जबकि सेल्फ डिसिप्लिन वालों का जो एटीट्यूड है वो गोल ओरिएंटेड है, उनके पास एक गोल है कि हमने अपने लॉन को या अपने खेत को हमने अच्छा करना है क्योंकि आने वाले सीज़न में हमने इससे फ़ायदा उठाना है। जो आपके आजकल बहुत ज़्यादा चींटियाँ निकली हुई हैं, हर जगह पे चींटियाँ हैं, आप कहीं चींटियों को नोट करें, कहीं पे चीनी डाल दें या कोई मिठाई का पीस रख दें और आप चींटियों को नोट करें कि वो मुस्तकिल किस कदर मेहनत करती हैं। आजकल इस मौसम में उनको भी गर्मी लगती होगी, उस गर्म ज़मीन पे और गर्म मट्टी में वो उसी तरह चलते 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 जा के वो खाना उठा उठा के अपने घर ले जाती हैं और वहाँ पे अपने लिए ज़खीरा करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद एक ऐसा मौसम आने वाला है जिसमें हम लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे या बहुत सर्दी हो जाएगी या बारिशों के बाद पानी जमा हो जाएगा, तो हमने उस तक सारी मेहनत करके ये सब कुछ जमा करना है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है। देखिए, शहद की मक्खी का और चींटी का कुरान में जिक्र है, तो यानी ये ऐसी और बड़े पॉजिटिव अंदाज में, वैसे तो मक्खी का भी और मच्छर का और मकड़ी का भी जिक्र है लेकिन वो इतने पॉजिटिव उसमें नहीं है, पॉजिटिव लाइट में नहीं है। जबकि शहद की मक्खी और चींटी जो हैं इनका तो बुज़ुर्ग कीड़ों में ज़िक्र है, जो हशरातुल अर्ज़, जिनसे हमें सीखना चाहिए। और शहद की मक्खी जो है उसके लिए तो यानी यहाँ तक है कि ये उस वक्त तक काम करती रहती है और फूलों का रस चूस चूस के अपने घर में ला के शहद बनाती रहती है कि इसी तरह एक परवाज़ में इसकी मौत हो जाती है। तो जो लोग शहद की मक्खियों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। आप देखें, वो उड़ते उड़ते परवाज़ में ज़मीन पर गिर पड़ती है और उसकी जान ख़त्म हो जाती है। तो आपने ख़ुद कभी फ़ील किया है, जैसे हम किसी बहुत ही माजूर या मोहताज इंसान को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि या अल्लाह हमें मोहताजी से बचा, या अल्लाह हमें ऐसी मजदूरी वाले दिन से बचा, या अल्लाह हमें अपने प्यारों पर बोझ बनने से बचा ले। तो वो जो हैं वो क्या है कि हम चलते फिरते काम करते करते या अल्लाह हमें उठा ले। असल में हम जो दुआ मांग रहे होते हैं, हम अपने लिए एक ऐसा खात्मा बिलखैर मांगते हैं जैसा शहद की मक्खी का होता है। तो शहद की मक्खी क्या करती है, इंतहाई डिसिप्लिन की ज़िंदगी गुजारती है, इंतहाई नज़्म व ज़ब्त की ज़िंदगी, जिसमें वो खामखा रिलैक्स करने के लिए टांगों पे टांगें रख के टीवी के सामने नहीं बैठती है। अगर हम बैठते भी हैं तो हमें वो वक्त लिमिट कर देना चाहिए, हमें वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए और हमें सारा वक्त अपने और लोगों के फ़ायदे का सोचना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। अब सेल्फ डिसिप्लिन जो है, इसकी मोटिवेशन फ्यूचर के विजन से आती है। जब एक इंसान के पास अपने फ्यूचर के लिए एक नज़रिया होता है, अपने फ्यूचर के लिए उसके पास एक आइडिया होता है, जब उसके पास एक विजन होता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है, तो उस वक्त फिर वो सेल्फ डिसिप्लिन करने वाला इंसान बनता है। और इसकी मिसाल जो है वो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही से ये मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि जब उन्होंने वो हज़रत जिब्रील को पहली दफ़ा देखा, जब उन्होंने कहा कि इक़रा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक हैबत तारी हो गई, एक कपकपी तारी हो गई और आप भाग के ग़ारे हिरा से उतरे और हज़रत खदीजा के पास आके आपने कहा ज़म्मलूनी, मुझे एक कम्बल उड़ा दो, मुझे सर्दी लग रही है। और जब थोड़े उनके हवास बजा हुए तो उन्होंने हज़रत खदीजा को वो वाक़या सुनाया कि मैंने तो ऐसी एक चीज़ देखी है। और हज़रत खदीजा ने उनको फिर वो मार्कतुल आरा तसल्ली दी कि आप जो हैं तो आप सादिक हैं और अमीन हैं और आप अपनों का ख्याल रखने वाले हैं, तो आपका अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। और आपकी हिम्मत बंधाई उन्होंने और ढारस बंधाई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से जब कंपोज हो गए और स्टेबल हो गए तो हज़रत खदीजा ने आपको कहा कि आप सो जाइए। तो उसके जवाब में, और ये बहुत सी हदीसी किताबों में ये बात नहीं है, मुझे दुख होता है कि हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो ये बात बहुत कम हदीस की बातों में है, किताबों में है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त हज़रत खदीजा को कहा कि खदीजा अब तो दीन आ गया है, अब क्या सोना, अब क्या आराम। यानी कि जिसको उसकी ज़िंदगी का मकसद समझ आ जाए, उसके लिए फिर आराम जो है वो मकसद हासिल करने में होता है और मेहनत करने में होता है। उसके लिए आराम फिर नरम गद्दों पर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर खराटे लेने से नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये मैं सेल्फ़ कंट्रोल और सेल्फ़ डिसिप्लिन का फ़र्क आपको, इंशाल्लाह मैं अपने नोट्स की तस्वीर भी आपको भेजूंगी, बल्कि मैंने नीट करके लिख दिया है ताकि आपको साफ नज़र आए। जैसे पहली मिसाल जब मैंने आपको दी थी वो ये थी कि किसी की बात अगर आपको बुरी लगी है तो आप उनको कहें कि मैं आपको बुरा कुछ भी नहीं कह रही जी, मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर रही हूँ। तो असल में सेल्फ़ कंट्रोल में ये होता है कि आप बुरा बोल नहीं रहे होते, लेकिन आप बहुत कुछ बुरा सोच रहे होते हैं, और उस वक्त आप दिल में ये सोच रहे होते हैं कि एक दफ़ा जी ये मौका गुजरने दें, फिर मैं आपके साथ देखूँगी और मैं आपको अच्छी तरह सबक सिखाऊँगी। तो ये टॉक्सिसिटी जो है, ये एक जहर जो है, ये हम अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं उस वक्त अपने आप को घूंट कर और अपने आप को कंट्रोल करके। तो ये तो यकीनन एक बहुत ही अनहेल्दी एटीट्यूड है, और रिसर्च के मुताबिक भी जिन मुआशरों में लोग बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं और आपस में ज़ोर ज़ोर से लड़ते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी वो एक दूसरे को मारते पीटते हैं, उन मुआशरों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी और स्ट्रेस, हत्ता के ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियाँ बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि वो लोग उसी वक्त अपनी वो टॉक्सिसिटी और अपना वो नेगेटिव एक्सप्रेशन जो है उससे निजात हासिल कर लेते हैं। तो सेल्फ़ डिसिप्लिन करने वाले लोग जो हैं वो असल में कभी भी बुरा सोचते नहीं हैं। जब आपको कोई बुरी बात कहता है तो आप उसको, मैंने आपको प्रोएक्टिविटी पढ़ाई थी कि उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, आप उसको प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली सोचते हुए, और आप उनको ये कहते हैं कि मैं आइंदा क्या ऐसा करूं कि आपको इतना गुस्सा ना आए, और आप मुझे बताएं कि मेरी कौन सी बात आपको इतनी बुरी लगी है। तो सेल्फ़ डिसिप्लिन वाले जो लोग हैं वो कभी भी बुरा सोचते नहीं हैं, उन्होंने अपने आप को ऐसे ट्रेन किया हुआ होता है कि एक नेगेटिव सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, और वो बुरा बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो बुरा सोचते भी नहीं हैं। फिर उसके बाद सेल्फ़ कंट्रोल की एक डिमांड है कि आप अपने गुस्से को या अपनी नेगेटिविटी को दबा दें। हम कहते हैं ना, बस यार अभी चुप रहो, बस तुम अभी चुप हो जाओ, फिर खैर है बाद में देख लेना, तो वो सप्रेशन होती है, एक चीज़ को हम ज़बरदस्ती सप्रेस कर रहे होते हैं, जबकि सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है नज़्म व ज़ब्त और अपने आप को रेगुलेट करने की डिमांड ये है कि हम उस चीज़ को मैनेज करें। हम जब हमें गुस्सा आ जाए तो हम उसे सही तरह मैनेज करें, उस गुस्से की एनर्जी बजाय इसके कि हम गाली गलौज करें और गीबत करें और किसी को बुरा भला कहें और उनका दिल तोड़ें, हम उस गुस्से की एनर्जी जो है वो किसी पॉजिटिव काम में लगाते हैं। और एक तो गुस्सा आने ही नहीं देना चाहिए, पानी पी लें, फौरन से बैठ जाएं, नफल पढ़ लें, और उसके बाद वो जो गुस्सा आपको आ रहा है, और नफल तो एक ऐसी ट्रिक है ना, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर सख्त गुस्से में आप खड़े होकर नफल पढ़ेंगे ना तो आपको उस मसले के ऐसे ऐसे हल आपको समझ आएंगे, आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस अल्लाह बताएगा उस वक्त जो आप बग़ैर उसके यानी गुस्से की हालत में सोच भी नहीं सकते थे। तो गुस्सा एक्चुअली सप्रेस नहीं करना है बल्कि उसे मैनेज करना है, उसे ठीक जगह पे रख देना है। उसके बाद आप अक्सर जो सेल्फ़ कंट्रोल वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी बाद में देख लेंगे, अभी तो मैंने बड़ा कंट्रोल किया है, बाद में मैं अच्छी तरह आपको देख लूँगी। ठीक है, जबकि जो सेल्फ़ डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं वो अगला जब गुस्से में होता है तो वो उसको इतना ही कहते हैं कि इस वक्त आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है और इंशाल्लाह बाद में मैं आपके साथ मिलकर ये मामला ज़रूर सुलझाऊंगी, मेरी कोशिश होगी कि हम इस मामले को अच्छे तरीके से सुलझा लें, हम इसे रिजॉल्व कर लें, ना हम कुछ दबाते हैं ना हम कोई चीज़ बाद के लिए उठा के रखते हैं कि जी हम दबा दबा के बाद में अपना ब्लड प्रेशर भी हाई हो, अपने सर में भी दर्द हो, अपने दिल की शरियाने भी तंग करें और जो अगला बंदा है उसका फिर वो हशर नशर करें कि हम उसके साथ ज़्यादती के मुर्तकब हो जाएं और हम उसको इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दें कि आइंदा के लिए हमारा उनके साथ ताल्लुक़ ख़राब हो जाए। ठीक है जी, फिर सेल्फ़ कंट्रोल जो है उसमें गुस्से का एलिमेंट है। जब गुस्सा आता है तो गुस्से में और दबाव में हम लोग सोच रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसमें एम्पथी आ जाती है। एक डिसिप्लिन इंसान जो होता है, जो अपने आप को डिसिप्लिन कर चुका होता है और अपने नफ्स की ट्रेनिंग कर चुका होता है, वो उसमें एम्पथी होती है। और एम्पथी, सिंपथी और एम्पथी में भी बहुत फ़र्क है। सिंपथी का मतलब है किसी के लिए हमदर्दी महसूस करना और वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन एम्पथी जो है ये वो पैगंबराना एटीट्यूड है जिसका मतलब है कि दूसरे के की जगह अपने आप को रख कर सोचना। एम्पथी ये है कि मैं ये सोचूं कि अगर इस तरह की बात अभी मेरे सामने हुई होती या मेरे साथ किसी ने अगर ये हरकत की होती तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होता, या अगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता, या अगर इस टीचर ने मेरे बच्चे को इतनी बुरी तरह डांटा है तो अगर इस टीचर की जगह मैं होती, अगर मुझे इतने सारे मसले मसाइल दरपेश होते, अगर मेरी तनख्वाह इतनी कम होती, अगर मैं इतने ज़्यादा क्लासें मुझे लेनी पड़ती और दिन की आखिरी क्लास में उसने मेरे बच्चे को बुरी तरह डांटा है, तो यकीनन मैं भी शायद अपने बच्चे के साथ ये ही करती। ये एम्पथी है और ये बहुत हाई लेवल की क्वालिटी है। ये नबियों की खसूसियत है कि नबियों को कहा जाता है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो पहले जिसको आपने ज़ख़म पहुंचाया है या जिसने आपको ज़ख़म पहुंचाया है, आप भी उसको पहले ज़ख़म पहुंचा चुके हैं, तो अपने आप को उनकी जगह रख कर सोचें। ठीक है जी, तो होता क्या है कि सेल्फ़ कंट्रोल वाले लोग जो हैं इनमें एक ख़ास फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। ऐसे लोग आपने देखे होंगे ना, जो हर वक्त घुटे हुए और भिजे हुए लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो बस फट पड़ेंगे किसी बात पे, और उनसे हर किसी को डर लगता है। उनके साथ कोई भी ऑनेस्टली बात नहीं कर सकता, उनको कोई भी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दे सकता, उनके साथ कोई भी खुल के अपने मसले नहीं डिस्कस कर सकता, और वो बस बेचारे हर वक्त जो हैं तो बस वो फू फाँ वाली सिचुएशन में होते हैं कि जी बस बात हुई नहीं है और अभी एक धमाका होगा, अभी एक पटाखा होगा और ये तो आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से मुसलसल एक चीज़ को दबा दबा के जब हम अपने अंदर वो जहर और वो टॉक्सिसिटी भर लेते हैं तो हम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। और फ्रस्ट्रेशन में फिर मसला क्या है, इसमें दिल तंग हो जाता है हमारा। दिल, हम ना किसी की कोई बात सुन सकते हैं, ना कोई बात बर्दाश्त कर सकते हैं। कुरान में है, सूरह तगाबुन में भी है और एक और जगह पर भी है कि वमई यू का शुह नफ्से ही, और जो अपने नफ्स की तंगी से बचा लिया गया, फ़ऊला इका हमुल मुफ्लिहून, तो फिर यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो इतना बड़ा वादा है दिल की तंगी से बचने का, और दिल की तंगी से बचने का फॉर्मूला क्या है कि अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना होने दें। और फ्रस्ट्रेशन से बचने का फॉर्मूला क्या है कि अपने गुस्से को और अपने मनफी जज्बात को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें एक तामीरी अंदाज में, एक पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करें और अपने ताल्लुकात लोगों से सिर्फ एक लम्हाती इंस्टिंक्ट के तहत ना ख़राब करें। और दिल की तंगी का बड़ा नुकसान क्या है, इंसान मायूस हो जाता है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे ना जिनको आप कहते हैं कि यार आप कह के तो देखें, और वो आपको आगे से कहते हैं कि यार इनको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखें, अल्लाह की मखलूक से और अल्लाह के बंदों से जब आप मायूसी का इजहार कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आप किस से मायूसी का इजहार कर रहे हैं? आप अल्लाह से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। और अल्लाह से मायूसी किसने की थी? अल्लाह से मायूसी शैतान मरदूद ने की थी, जब उसने तौबा करने की बजाय अल्लाह को कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ, तूने इसे मिट्टी से बनाया है और मैं तो आग से बना हूँ, और अगर तू उससे इतनी मोहब्बत करता है, और आदम ने तौबा कर ली और वो बख्श दिया गया, और इन शैतान ने कहा कि ए अल्लाह जैसे तूने मुझे गुमराह किया है ऐसे मैं इसको गुमराह करूँगा, तो उसने अपनी नाकामी का और अपनी गुमराही का और अपने तकब्बुर और इनकार का वबाल अल्लाह की ज़ात पे डाल दिया। यानी कि उसकी जो मायूसी थी उसकी जो दिल की तंगी थी और उसका जो तकब्बुर था वो उसको इतनी बड़ी इतने बड़े गुनाह की तरफ ले गया। तो जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर और भूख की और प्यास की परवाह किए बगैर और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर मुसलसल एक गोल के लिए और एक विज़न के लिए काम कर रहे होते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम होता है और वो उसके साथ मोटिवेटेड होते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं। और वो क्या होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होते, वो प्रोग्रेस करते हैं, वो प्रोग्रेसिव होते हैं, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि कोई लॉन में पसीने में शराबोर काम कर रहा है और कोई एयर कंडीशन कमरे में दुम दबा के बैठा हुआ है और मुसलसल गर्मी के मौसम को और लोगों को गालियां दे रहा है और वापडा को भी गालियां दे रहा है और हुकूमत वक्त को भी बुरा भला कह रहा है कि हमारे पास बिजली नहीं है और हमारे पास एसी नहीं है और हमारे पास अगर एसी है भी तो ये इतना ठंडा क्यों नहीं है और अगर ये बहुत ठंडा है तो अब तो हम ठंडे और गर्म हो जाएंगे। वो मुसलसल एक बेकार चक्कर में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास और कुछ करने को है नहीं, उसकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं है, उसके पास कोई विज़न नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात फिर क्या निकली सेल्फ डिसिप्लिन होने के लिए, कि आपके पास एक विज़न होना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का मकसद आपको मालूम होना चाहिए। और ज़िंदगी का मकसद हमें कुरान से ज़्यादा और क्या चीज़ और कौन समझाता है? हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की राह में कोशिश करना है, उसके मखलूक की खिदमत करनी है, अपने आप को इतना अच्छा करना है और अपने दिल को इतना खालिस और साफ़ करना है कि हम कल्ब सलीम ले कर वापस अपने प्यारे अल्लाह से जाकर मिल जाएँ। तो प्रोग्रेसिव लोग जो हैं, जिनमें आगे बढ़ने की लगन और उम्मीद के साथ मेहनत करने की कैपेसिटी होती है, वो सेल्फ़ डिसिप्लिन लोग होते हैं। ठीक है जी, तो लम्हाती कामयाबी के लिए अपने आप को घोटना और सेल्फ़ कंट्रोल इख्तियार करना जो है, वो यकीनन सेल्फ़ डिसिप्लिन से यहाँ पर बुरी तरह हार जाएगा, क्योंकि सेल्फ़ डिसिप्लिन जो है वो इंसान को हमेशा की एक पायदार कामयाबी देता है और वो इंसान को एक खुश और हशाश पशाश ज़िंदगी देता है। जो इंसान डिसिप्लिन होता है, याद रखें जब इस्लाम ने हमें 5 नमाज़ें दी हैं, एक ख़ास महीने में रोज़े दिए हैं, ख़ास दिनों में इस्लाम ने हमें हज दिया है, हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन है। हैं जी, कुरान में लिखा हुआ है कि किताब मुअज्जला, एक किताब है जो लिखी जा चुकी है, जिसकी टाइम पक्का है, जिसका हिसाब हो चुका है, आदाद लिख लिए गए हैं। तो फिर हम लोग अपने आप को क्यों ना सेल्फ़ डिसिप्लिन बनाएं? सबसे पहली जो मैंने यहाँ आपको असाइनमेंट देनी है, और ये असाइनमेंट आपका कुछ टाइम लेगी, वो ये है कि आपने आज से सोचना है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं और आपके इर्द गिर्द ये मकासद बिखरे हुए हैं। हम एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, हम अपने बहन भाइयों को खुश रखना चाहते हैं, हम अपने पड़ोसियों को खुश रखना चाहते हैं, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, हम अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, हम अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं। ये सारे मकासद तो हमें पहले से ही मालूम है और ये कोई कम मकासद तो नहीं है। हाँ, जब हम इनमें इंगेज होते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें मज़ीद तरक्की देता है और हमें बड़े मकासद की तरफ लेकर जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने उस हिज्ब में, जो हिज्बुल्लाह है, जो अल्लाह की फ़ौज है, अल्लाह हमें उसमें शामिल होने का शर्फ अता करता है कि ठीक है, तुमने अपने बुनियादी काम इतने अच्छी तरह कर लिए और तुमने अपनी सारी ड्यूटीज़ इतनी अच्छी तरह निभा ली और अब तुम इतने सेल्फ़ डिसिप्लिन हो गए हो कि मैं तुम्हें अपनी हिज्ब में शामिल करता हूँ, मैं तुम्हें हिज्बुल्लाह में शामिल करता हूँ। और फिर अल्लाह ताला हमें ख़ुद रास्ते दिखाता है और हमें समझाता है कि आगे कैसे बढ़ना है और अल्लाह की राह में हम मज़ीद से मज़ीद तर काम करते हैं। तो आज से आपने सीरियसली ये सोचना है, अपने काम लिख के रखने हैं और गर्मी सर्दी भूख प्यास अच्छे बुरे की और तनकीद की और लोगों की बातों की परवाह किए बग़ैर आपने उन कामों में इंगेज होना है। ठीक है जी, क्योंकि आगे जो आपके तकरीबन 10 एक लेसन आ रहे हैं वो सारे इसके बारे में हैं। जो कि मैंने फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट से निकाले हैं, क्योंकि उस किताब से बेहतर कोई भी किताब हमें ये नहीं बताती कि हम अपनी अपनी रियल प्रायोरिटीज़ को कैसे हम अपनी प्रायोरिटीज़ बनाएं। किताब का नाम भी यही है, फ़र्स्ट थिंग्स फ़र्स्ट, के जो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको सबसे पहले करना है, चाहे मौसम कुछ भी हो, चाहे बाकी हालात कुछ भी हों, अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं छोड़नी है, तभी एक कामयाब ज़िंदगी और एक बामकसद ज़िंदगी हम गुजार सकेंगे। ठीक है जी, तो कल मिलने के वादे के साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।